ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. எட்டின் வரி மந்திர ஹம் சபி கோ கிஸ்னே பக்கா கராயா? ஹமாரே சாம்னே கௌன் சி தாதி யாத் ஆயேகி? ஜானகி தாதி. ஹமாரே ஜீவன் கா சப்சே படா சௌபாக்ய ஹே கி மேரா அலௌகிக் ஜன்ம ஜானகி தாதி சே ஹுவா ஹே. ஆர் 1966 கே அந்தர் ஜப் சாக்கார் பாபா நே குஜராத் கா சப்சே பெலா சென்டர் பாபா கே த்வாரா குலா. ஆர் பாபா நே ஹி ஜானகி தாதி கோ வஹா சேவா மே ரக்கா ஹுவா தா. ஐசே பி சாக்கார் பாபா கோ குஜராத் கே லியே ஏக் விசேஷ வரதான் பி மிலா ஹுவா ஹே. கியோகி பாபா கே ஹி சங்கல்ப சே குலா ஹுவா ஹே. ஆர் ஜானகி தாதி ஜப் அம்தாபாத் மே ரஹதி தி தபி பாபா கி ஜோ சேவாயே சல்தி ரஹதி தி. ஆர் உன்கோ ஹோதா தா கி கைசே பாபா கா சந்தேஷ் கர் கர் ஜாகர் கே மிலே. ஆர் பஹத் பாபா கி சேவா கோ तो हमारे लौकी घर के बाजू में साप्ताहिक कोर्स करने के लिए बहने आती थी. और जब 7 दिन पूरा हुआ तो जानकी दादी उसी समय वहां सबको मिलने के लिए आई. पुरुषोत्तम मास चल रहा था और बहुत माताएं वहां सुनने के लिए आती थी. तो दादी ने कहा कि अभी 7 दिन तो पूरा हो गया और आप लोगों की जो इच्छा हो तो बहने यहाँ सुनाने के लिए आ सकती है. तो सभी की बहुत इच्छा थी कि हमको बहुत अच्छा ज्ञान लगता है. तो दादी ने कहा कि अच्छा, अभी कल से लेकर के यहाँ क्लास चलेगा. तो जिसके घर में रखा था उनकी इच्छा नहीं थी कि भाई हमारे घर में ये क्लास चले. तो उन्होंने कहा कि दादी ने कहा अच्छा तो कहाँ रखे. तो हमारी लौकिक माता जी सुनने के लिए जाती थी. तो बोला कि ये ब्राह्मण परिवार के शिव का मंदिर है और बहुत भक्ति भाव वाले है, तो उनको दादी आप पूछो. हमारी माता जी को पूछा तो उन्होंने बोला हम घर जाके हमारे लौकिक पिताजी को पूछेंगे. लेकिन दादी ने कहा नहीं, मैं अभी ही आपके घर में चलती हूँ. तो जानकी दादी हमारे लौकिक घर उसी ही समय आई. आते ही पिताजी से मिली और पिताजी को बोला कि आपका नाम क्या है. तो बोला कि मेरा नाम नारायण कुमार है. तो अच्छा, आपका नाम भी नारायण कुमार है और भगवान भी ऐसे ही नारायण बनाने आया है. और ये जो ज्ञान है अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो आपके घर के अंदर सत्संग चले. तो पिताजी ने बोला कि बोली हाँ बोला. लेकिन उसी समय हम स्कूल से पढ़ कर के घर में प्रवेश कर रही थी और दादी जी को हमने देखा और मैं दरवाजे के आगे खड़ी रही, घर में नहीं गई. और पिताजी से दादी बात करती थी तो करते करते उनकी नजर हमारे ऊपर गई. और जैसे मेरे ऊपर नजर गई दादी की, वैसे दादी ने पिताजी को बोला कि ये जो बच्ची है वो आपकी नहीं है, ये भगवान की है और आज मैं उनको अपने साथ ले चलती हूँ. पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक तो सत्संग के लिए बात करने दादी आई है और कहती है कि ये बच्ची आपकी नहीं है और मैं ले जाती हूँ. पिताजी ने बोला न मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता हूँ और न आपको पहचानता हूँ. आपने सत्संग के लिए जो बात की है तो ठीक है सत्संग चले, लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मुझे बहुत पढ़ाना है, पढ़ने के बाद उनका जो विचार हो तो मैं आगे सोच सकता हूँ। तो दादी ने उस समय बात बदल दी, अच्छा ठीक है आप बहुत पढ़ाओ और यहाँ सत्संग जरूर रखो। तो बोला सत्संग के लिए छुट्टी है। तो ऐसे देखो बाबा कहते हैं, किसी आत्मा की नजर हमारे ऊपर क्यों पड़ती है। जैसे आज गीत बज रहा था कि प्राणों से भी प्राणेश्वर, आपने हमको भगवान को मिला दिया, प्रभु को मिला दिया। तो मेरा जो जीवन था वो ये था कि मैं बहुत छोटी थी, 6-7 कक्षा में पढ़ती थी, तभी मैं जो स्कूल के अंदर पढ़ाई में मीरा का, ध्रुव का, प्रहलाद का जीवन कहानी आती थी और उसमें ये बताते थे कि एक भगवान को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में जाके तपस्या की, सब कुछ छोड़ा तब भगवान को प्राप्त किया। और तब से लेकर के मेरा एक ये संकल्प था कि मैं कभी ये घर छोड़कर के जंगल में जाके तपस्या करूं। हमारे लौकिक पिताजी भी ज्योतिष का जानता था और उन्होंने भी छोटेपन से माताजी को बता दिया था कि इनकी जो उम्र 15 या 16 साल की होगी तभी वो घर छोड़कर के चली जाएगी, लेकिन वो चली तब जाएगी कोई बहुत बड़ा प्रबल गुरु मिलेगा और जैसे वो गुरु मिलेगा तब से वो घर में नहीं रहेगी। इसीलिए आप बड़े ध्यान से उनकी पालना करना जो घर छोड़ के चली न जाए। तो ये मेरा जीवन का समय था सन्यास का, कि मुझे बहुत तीव्र गति से सन्यास लेने का सोच चलता था और उसी घड़ी दादी हमारे लौकिक घर में पहुंची और देखते ही दादी ने ये कहा, उसी समय से हमारे घर के अंदर गुजरात के अंदर सबसे पहली गीता पाठशाला खुली और उनके बाद रोज बहने आने लगी। हम तो स्कूल पर जाती थी और जब आती थी तो बहनों का क्लास पूरा हो जाता था और मैं बस स्टैंड पर रखने के लिए जाती, तब मुझे कुछ न कुछ ज्ञान वो लोग सुनाते रहते थे, धारणा की बातें कहते रहते थे। एक ही बात कहते थे कि आपको भगवान को प्राप्त करना है, तो वो तो मेरा जीवन ही था। हमने बोला हाँ, तो बोला देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन की ये धारणा करनी पड़ेगी। हमने बोला हमको सब कुछ तैयार है। और जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बाबा को पत्र लिखो, भगवान को पत्र लिखो। तो उसी समय हमने 6-7 दिन के बाद बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमने ये ज्ञान सुना है, आप इस सृष्टि पर आ चुके हो और मुझे आपको मिलने की बहुत दिल है, आप हमको छुट्टी दो तो हम आपके पास चले आए। बाबा को जब पत्र लिखा, बाबा ने भी बहुत प्यार से पत्र का जवाब भी दिया और उनके बाद हमारे जो लौकिक पिताजी है उनको दादी ने कहा कि अभी आपको मधुबन चलना है तो हमारे साथ चलो, मैं पार्टी लेके जाती हूँ। शुरू के अंदर जब ज्ञान सुनाया जाता था 7 दिन का, तो उनके पहले ये नियम जो है वो बताते थे, अभी नियम पहले नहीं बताते, 7 दिन के कोर्स के बाद सोचते ये धारण कर सकेंगे या नहीं, और धीरे धीरे युक्ति से सब नियम बताया जाता है जो वो ज्ञान से चले न जाए। लेकिन शुरू के अंदर पहले ही दिन कहते थे कि आप यहाँ 7 दिन का कोर्स करते हो तो 7 दिन के लिए एक व्रत रखो। पहले तो कहते थे 7 दिन के लिए ब्रह्मचर्य की पालना करनी है और खान पान की शुद्धि में कांदा लहसुन नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, 7 दिन तक एकाग्र होकर के ये ज्ञान सुनना है, तब आपके जीवन के अंदर धारणा होगी और तब आप सेवा अच्छी कर सकेंगे। तो ये बात पहले कहते थे, तो उसी समय वो बातें जीवन के अंदर सात दिन जो पवित्र मन रख करके धारणा बना करके जब सुनते थे तो वो धारणा पक्की होती जाती थी, सात दिन के बाद तो और पक्का हो जाता था। तो ऐसे थोड़ा मास के बाद दादी ने पिताजी को पूछा तो उसी समय पिताजी ने ये कहा कि दादी एक साल से मेरी सर्विस जो है वो छूट गई है, सारी मिल बंद पड़ गई है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बोला कि नहीं, आपको तो मुझे ले जाना है, क्योंकि दादी की बुद्धि में ये था कि पिताजी को जो बुद्धि में बैठेगा ना तो इनको छुट्टी मिल जाएगी। तो पिताजी ने कहा कि दादी जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं मधुबन में बाबा के पास आऊंगा। दादी ने बोला नहीं, मैं आपकी टिकट निकलवाऊंगी लेकिन मैं आपको लेके जरूर जाऊंगी। पिताजी ने बोला कि दादी ऐसे तो मैं नहीं आ सकता हूँ, जब मुझे नौकरी मिलेगी तभी ही मैं आऊंगा मेरे पैसे से खर्च करके। लेकिन दादी का ये दृढ़ संकल्प था। तो पिताजी ने घर आके हमारे माताजी को बताया तो माताजी ने कहा कि हम दादी को कहो कि टिकट आप नहीं निकलवाओ, क्योंकि उस समय परिस्थिति ये थी कि हम घर में साथ खाने पीने वाले, एक साल से नौकरी बंद थी, इतना बैंक का बैलेंस नहीं था और ऐसे ही घर चलाते थे, हम लोग पांच भाई बहन पढ़ते थे, ये सारा खर्चा था, इसलिए सोच चलता था। लेकिन दादी ने जब बोला तो माताजी ने बोला नहीं, आप भगवान जब सृष्टि पर आए हुए है तो वहाँ आप जाओ और हम घर में कैसे भी चलाएंगे। तो उस समय टिकट 11 रुपये की आने जाने की, बस की और टैक्स आदि सब मिला करके 11-12 रुपया होता था, लेकिन वो भी उसी समय का तो बहुत पैसा गिना जाता था। लेकिन माताजी ने कहा आप जाओ और हम घर में कैसे भी चलाएंगे। और वो जब गए और छोटे दो भाई बहनों को लेके गए तो उसी समय हमने अपने घर के अंदर सिर्फ चार आने की छाछ बहुत बड़ी तपेली में भर के आती थी और हम रोटला और छाछ खाते थे, साग और दूध नहीं लाते थे। वो पैसा बचा करके पिताजी को भेजा बाबा के पास। जब बाबा के पास पहुंचे तब बाबा ने पहला प्रश्न पूछा कि बच्चे आप क्या कर रहे हो। तो पिताजी ने बोला कि बाबा मैं घर में ही बैठा हूँ, मेरी एक साल से नौकरी बंद हो गई है और मेरे सारे कारीगर भी घर में बैठे हुए हैं क्योंकि सारी मिल बंद पड़ गई है। तो बाबा ने बोला अरे बच्चे तुम्हारे लिए तो सर्विस तैयार है। तो बोला मेरे लिए तैयार होती तो मैं क्यों नहीं करता। नहीं बच्चे तुम्हारे लिए सर्विस तैयार है। तो जब पिताजी सात दिन बाबा के पास रह करके अहमदाबाद में वापस आए और दूसरे ही दिन एक सेठ के मालिक ने पत्र लिख के घर में भेजा था कि आपकी मिल बंद पड़ गई है, मैंने समाचार सुना कि आप घर में बैठे हो और मुझे रात को 12 से 7 बजे की तीसरी पाली शुरू करनी है और आप अपने कारीगरों को लेकर के आ जाना और मुझे ये शुरू करना है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो बाबा ने कहा और दूसरे ही दिन मेरे पास चिट्ठी आई और मुझे नौकरी मिल गई, तो सचमुच ये भगवान का ही कार्य है जो जानी जाननहार है। तो ऐसे ही वो नौकरी जब मिली तब पिताजी को पक्का निश्चय हो गया कि ये भगवान यहाँ आकर के कार्य करता है। तो उसी समय मुझे बोला कि जिस दिन तुम मधुबन में बाबा के पास जाएगी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम वापस घर नहीं आएंगी। हमने बोला नहीं, आप छुट्टी प्रेम से देंगे तब मैं घर बाहर निकलूंगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो बोला मुझे ऐसे लगता है। मैंने बोला क्यों। तो पिताजी ने माँ बाप का प्यार नहीं पाया था, छोटेपन से माँ बाप ने शरीर छोड़ा था, तो माँ बाप का प्यार क्या है वो उसको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाबा के पास आए तब बाबा ने इतना प्यार दिया था और इनके कारण उनको लगा था कि सच्चा जो माँ बाप है जिसका प्यार मैंने पहले ही पाया है। क्योंकि जब छुट्टी ले रहे थे तो छुट्टी के समय बाबा जो खड़े रहते थे, सबको बादाम मिश्री देते थे और गले लगाते थे बच्चे बच्चे के करके, और फिर बाबा के घर में वापस आना। ऐसे बाबा मिलता था और गीत बजता था कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो ऐसे लगता था कि मैं अपने सच्चे माँ बाप को छोड़ करके अभी मैं जा रहा हूँ। तो सभी की आंखों में आंसू आता था कि हम छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए ये अनुभव करके जब आए तब उनके मुख से यही निकला। और उनके बाद थोड़े समय के बाद हमारा प्रोग्राम बना, हम सात कन्याओं को, हमारी जूनागढ़ की जो दमयंती बहन है वो यहाँ पार्टी लेकर के आई। और उसी समय जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हम लोग प्रांगण में खड़े थे, बाबा चक्कर लगा रहे थे। जैसे हम लोग आए तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची आप लोग आ गए? हमने बोला हाँ। अच्छा अभी आप जाओ, थोड़ा आराम करो, फ्रेश हो जाओ और फिर बाबा आपको मिलेगा। तो जैसे हम लोग गए, बाबा ने कहा स्नान करके नाश्ता आदि करके तैयार हो जाओ, तब मैं बुलाऊंगा मैं आपको मिलने के लिए। तो उसी समय जब हम लोग सब तैयार हो गए, नाश्ता कर लिया, तो बाबा ने फिर अपनी रूम में बुलाया और उसी समय हम बाबा की रूम में गए। और जब बाबा की रूम में गए तो बाबा ने पहले ही पूछा, आप सभी बच्चियां क्या कर रही हो? तो हम सभी ने बोला, हम सात कन्याएं थी। तो बाबा कहते थे कि आज हमारी ये सात शीतला देवी आई है और सात देव सात कन्याएं है, माना सो ब्राह्मणों से उत्तम एक है। तो आज कितने सारे ब्राह्मण यहाँ मधुबन में पहुंचे हुए है, ऐसे बाबा सुनाते थे। और हमने सभी ने कहा कि बाबा हम पढ़ाई कर रहे है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची अभी पढ़ाई करके क्या करेंगे? तो मुझे बाबा ने देख करके बोला कि बच्ची अभी पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि तुमको कोई नौकरी करनी है क्या जो टोकरी उठाए? तो मैंने बोला नहीं बाबा, नौकरी नहीं करनी है। तो बोला अच्छा बच्ची पढ़ाई को छोड़ देना। मैंने बोला जी बाबा। और फिर जो छह कन्याएं थी उनको बाबा ने बोला कि आप सभी को पढ़ाई चालू रखनी है। तो जो बहने मेरे साथ थी उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे क्यों, एक को छोड़ने के लिए कहते हो और हम सभी को पढ़ने के लिए कहते हो? बाबा ने बोला हरेक का भविष्य अपना अपना है, हरेक की जन्म पत्री अपनी अपनी है, उनका छोड़ने में कल्याण है, तुम्हारा पढ़ने में कल्याण है। क्योंकि मेरा एसएससी था, मैं कॉलेज करूँ तो और ज्यादा करना पड़े। जो और बहने हमारी साथ वेदांती बहन और चंद्रिका बहन थी, और वो जो थी वो कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, एक ही वर्ष पूरा करना था। और दूसरी हमारी पोरबंदर की गीता बहन थी, वो बहुत छोटी थी इसलिए वो तो पढ़ाई को उनको चालू रखना था। और दूसरी जो बहने हैं वो तो अभी यहाँ है नहीं यज्ञ में। तो हरेक की बाबा ने जन्म पत्री देख करके जवाब दिया। और उनके बाद फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची अभी आप लोग जैसे कि बाबा के पास आए हो और बहुत भरपूर होके जाना, तो बाबा के हमने यज्ञ के अंदर जो रूप देखा उनका मैं आज अनुभव सुनाऊंगी। बाबा हमारा माता और पिता है, उसका कैसा प्यार होता है उनका हमने अनुभव किया। क्योंकि जैसे हमेश पिता बच्चे को सोचते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं बच्चों को दूं, और वो प्राप्ति बाबा ने हम बच्चों को कराई। माँ के रूप में भी बाबा ने एक माँ छोटे बच्चे को अपने हाथ से जैसे खिलाते हैं वो भी बाबा ने अनुभव कराया। टीचर का रूप भी कराया। जब बाबा क्लास में आते थे तो हम क्योंकि पहली बारी आए थे तो हम छोटे छोटे थे तो हम लोग थोड़ा देरी से क्लास में आए। बाबा पहुंच गए थे, बैठ गए थे और बाबा की मुरली शुरू हुई और हम लोग आके पीछे बैठे। तो जब बाबा की नजर गई तो बाबा ने कहा अरे तुम बच्चिया पीछे क्यों बैठी हो, कन्याएं तो हमेशा आगे बैठना चाहिए। तो उठा करके हम लोगों को आगे बुलाया तो हमको बड़ा शर्म आया, क्योंकि सारे क्लास वाले बैठे थे और हमको पीछे से उठा करके बाबा ने आगे बुलाया। तो तब से हमको बुद्धि में आया कि अभी बाबा आए उनके पहले हमको आकर के बैठ जाना चाहिए, और दूसरे दिन से फिर बाबा आए उनके पहले हम आगे लाइन में बैठ जाते थे। और जब बाबा मुरली चलाते थे तो ऐसे भी आप लोग अनुभव तो करते होंगे, जब योग में बैठते हैं मुरली सुनते हैं तो कई बारी सुस्ती आ जाती है, तो नींद भी आती, झुटका भी आता, बगासा भी खाते हैं मुंह खोल करके। तो जैसे बाबा वो सीन देखता था तो देखो टीचर बन करके कैसे हमको अलर्ट करते थे, बाबा खुद देख करके एक्शन करता था, देखो देखो अभी भगवान आकर के पढ़ा रहे थे और बच्चे क्या कर रहे थे, उबासी खा रहे थे, झुटका खा रहे थे, बाबा एक्शन करके बताता था। तो टीचर कैसे अलर्ट करते थे और साथ साथ बताते थे कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे। ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वयं भगवान टीचर बन करके हमको पढ़ा रहा है। और उनके बाद टीचर के साथ साथ सतगुरु का रूप, जो हम बच्चों को बाबा रोज रोज महान मंत्र देते और सतगुरु बन करके हमको अपने अंदर जो शक्ति आई है और जो उनके अंदर ज्ञान है शक्ति है वो सब हमको गुरु दक्षिणा में देते रहते थे। और साथ साथ हमने अपने जीवन के अंदर चौथा स्वरूप जो बाबा का है धर्मराज का, वो भी हमने प्रैक्टिकल में मधुबन यज्ञ के अंदर पांडव भवन में देखा। जब हम लोग क्लास करके छूटे और उनके साथ सभी हम लोग अपनी रूमों में जाते, अभी उसी समय एक कुमार आया था और वो कुमार ने, ऐसे भी आप लोगों को मालूम है मधुबन आते पहले फॉर्म जरूर भरते हैं, और फॉर्म के अंदर उन्होंने लिखत में लिख दिया कि मैं जन्म से पवित्र हूँ क्योंकि कुमार हूँ, लेकिन उनका जीवन पवित्र नहीं था। और बाबा के पास जब वो सामने क्लास में आया तो बाबा की मुरली भी धर्मराज की चली थी कि इसी सभा के अंदर कोई इंद्रप्रस्थ की सभा में कोई ऐसे आकर के बैठा हुआ है, लेकिन बाबा की मुरली भी समझनी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा ने मुरली किसी किसके लिए चलाई, लेकिन वो नहीं समझ में आया। तो जब बाबा ने अपनी रूम में पार्टी को बुलाया, उस समय पार्टी के अंदर वो भाई भी साथ में था, तो उसी समय भी बाबा ने कहा कि बच्चों को कुछ पूछना है, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बाबा बड़े प्रेम से सभी को मिले, लेकिन हम लोग जब उठ के बाहर निकले तब बाबा ने एक भाई को बुलाया और वो जब बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप सच बताओ कि आपका जीवन पवित्र है, आप किसी के घर में आए हो वो बुद्धि में है, तो वो कोई भी शब्द बोला नहीं। और जब बोला ही नहीं तो दूसरे दिन जब बाबा की मुरली चली और अपने रूम में गया तो रूम में जैसे खटिया पर सोया तब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और अपना पांव पछाड़ने लगा, सिर पछाड़ने लगा, पटकाने लगा और बोलता था कि बाबा अभी मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ करो, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई है, बाबा अभी मेरे से ये सहन नहीं होता है। ऐसे उनको लगता था कि मुझे कोई मार रहा है और सारा शरीर पेन होता था और बहुत तकलीफें उनको होती थी, शरीर खींचता था हाथ पांव सारा और बहुत चिल्लाता था। तो छोटे छोटे जो बच्चे थे मेरे हमारे साथ, जो हमारे भाई आए थे, दूसरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो उसी रूम में जब गए चिल्लाना आवाज आया तो देखा तो वो लोग घबरा गए, और जब घबरा गए तो एकदम दौड़ के बाहर आए। बाहर आने के बाद विश्व किशोर भाव उसी समय वहाँ आया हुआ था, तो भाव का हाथ पकड़ करके बोला कि भाव ये भाई को कुछ हो रहा है के। आप चलो हमारे साथ रूम में, वो बहुत चिल्ला रहा है। तो भाव वहां गए उनके पास और जाकर के देखा, भाव ने बोला क्या हो रहा है के? बोला नहीं, अभी बाबा को मेरे पास बुलाओ, बाबा को बुलाओ, मुझे माफी मांगनी है और आज मेरे से कुछ सहन नहीं होता है के। जैसे मुझे लगता है कि कोई मुझे बहुत मार रहे थे और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो भाव गए बाबा के रूम में। उस समय बाबा क्लास के बाद जो ब्राह्मणिया लेकर के जाती थी उनसे बाबा ताश खेल रहा था। बड़ी बड़ी दादिया थी, बड़ी बहनें थी। तो बाबा को आके बोला, बाबा आपको एक भाई बहुत चिल्ला रहा है और बुला रहे है। तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्चे चिल्लाने दो और उनको ये अनुभव करने दो, क्योंकि वो बच्चा जो है वो भूल करके आया है और वो स्वीकार नहीं करता, ना बाबा को बताता है। तो इसीलिए, तो बोला बाबा आप नहीं आते तो उनकी ब्राह्मणी को भेजो। बाबा ने बोला वो भी नहीं आएगी। तो भाव को लगा कि अभी मैं क्या करूं। तो भाव ने क्या किया, एक पानी का ग्लास लेकर के गया और जब पानी का ग्लास लेकर के गया तो उनको बोला कि देखो बाबा ने आपके लिए पानी भेजा है के, तो थोड़ा पानी पीवो। पानी पिलाया और उसके मुंह पर और शरीर पर पानी डाला, तब वो थोड़ा शांत हुआ। और शांत होने के बाद फिर शाम को हम सभी ग्रुप को मिलने जाना था, तो वो भी साथ में आया। तो फिर बाबा ने बोला, अच्छा कोई बच्चे को कुछ कहना है? तो बोला किसी ने नहीं बोला, जिसको बोलना था उन्होंने भी नहीं बोला। जब हम उठ के बाहर निकले तब बाबा ने उसको वापस बुलाया और बाबा ने कहा, बच्चे आज क्या अनुभव किया आपने? तो बोला कि बाबा आज तो मुझे जैसे कोई बहुत मार रहा हो, सारा शरीर मेरा अभी भी पेन होता है के। तो बोला कि बच्चे अभी भी महसूस नहीं करते हो कि क्या कर्म किया है तुमने? बोलो बैठो और लिखो पत्र, तू धर्मराज करके बाप दादा को पत्र लिखो और तुमने जो पाप कर्म किए हैं, भले तुम कुमार हो लेकिन तुमने जो भी पाप कर्म किए हैं ना, वो लिख करके दो। और उनके बाद जब उन्होंने लिख के दिया, उनके बाद तो वो घर गए तो ज्ञान में से ही निकल गए थे। क्योंकि जो भगवान के घर आते हैं तो सच बोल के नहीं आते हैं, और इसीलिए बाबा ने वो अनुभव कराया। वो भी हमने अपनी आंखों से ये पाठ को देखा। और उनके बाद जब हम बाबा के घर से जाने का था, तब बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तुम जब विदाई लेने के लिए आओ तो बाबा को मिल के जाना। और हमको जाने का जो टाइम हुआ था तो हमारी ब्राह्मणी ने बोला कि कल जाना है कि आप तैयार रहना हमारे सारे ग्रुप को। तो मैंने तो बोला ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो हमारी 6 बहनें आई थी उन्होंने कहा हमको तो और 7 दिन बाबा के पास रहना है के, हम नहीं आएंगे। तो बोला नहीं, नियम है, नियम प्रमाण चलना है के। तो वो तो सीधा बाबा के पास गई। और वो जब बाबा के पास गई तो बाबा को बोला कि बाबा हमारी ब्राह्मणी है ना, हमको और 7 दिन रुकना है लेकिन ना बोल रही है। अच्छा बच्ची जाओ तुम बुला के लाओ। तो वो बुलाने आई। तो जब ब्राह्मणी को बुलाने आई तो दीदी हमारे साथ जो थी वो गई बाबा के पास। बोला बच्ची क्यों ना बोल रही हो? बोला बाबा यहाँ का नियम है। तो मैंने नियम बताया, नहीं बच्ची की दिल है ना तो भली रुके। लेकिन मैं उनके साथ खड़ी थी, मुझे बोला कि बच्ची तुमको जाना है। देखो पढ़ाई के लिए मुझे अकेली को कहा, उन लोगों को पढ़ना कहा, मुझे कहा तुमको इनके साथ सेंटर पर जाना है, घर नहीं जाना है, और इन बच्चियों को रहने की इच्छा है ना तो भले रहने दो। तो उसी समय हमने तो हमारा जीवन का छोटेपन से ये पाठ था कि जो बड़े कहते हैं उनको हाजी का पाठ पक्का था। हमने बोला बाबा जैसे आप कहेंगे। तो अच्छा बच्ची अभी इन लोगों की इच्छा को पूर्ण करने दो, ये बच्ची या भली मेरे पास रहे लेकिन इन बच्ची को तुम्हारे साथ ले जाना है, लेकिन घर नहीं जाना है, सीधा तुम अपने साथ सेंटर पर ले जाना। हमने बोला ठीक है बाबा। तो जैसे मैं छुट्टी लेने बाबा के पास गई, बाबा अपनी रूम में कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने बोला बाबा अभी मैं ये दमयंती दीदी के साथ जा रही हूँ, आपने जो कहा है तो अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, सेंटर पर ही जाऊंगी। तो बाबा ने उसी समय, में बहुत छोटी थी, 15 साल की मेरी उम्र थी, और उसी समय बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके सिर पर हाथ घुमाने लगा और सिर पर हाथ घुमा करके कहा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने बोला बाबा मेरा नाम पूर्णिमा है। तो बाबा वो पूर्णिमा शब्द नहीं बोलते थे, पत्र भी लिखते थे तो भी वो शब्द नहीं लिखते थे, बाबा लिखते थे और बाबा कहते थे पूर्णिमा। तो वो तो मेरी उम्र छोटी थी, वो तो कोई समझ में नहीं आता था। बाबा कहते बच्चे तुम पूर्णिमा हो, जगत की माता हो, तुमको तो जगत का कल्याण करना है कि माँ बन करके। अभी माँ का पाठ क्या होता है वो तो मालूम ही नहीं था, वो संस्कार भी नहीं था और कुछ समझ में भी, बाबा कहता था तो बाबा को देखती रहती थी। बाबा ने सिर पर हाथ घुमा करके कहा बच्ची अब तुम सेंटर पर जाएंगी, तुमको दाल रोटी बनाना आता है। मैंने बोला बाबा मैंने नहीं सीखा है के, और न मुझे किसी ने सिखाया है के, मैं तो पढ़ रही हूँ। अच्छा दाल रोटी बनाना सीख जाएगी? मैंने बोला हाँ बाबा। अच्छा तुमको यज्ञ के अंदर 2 कपड़ा मिलेगा, चलेगा? मैंने बोला बाबा जिसके लिए मैं घर छोड़ने वाली थी उसी की गोद में मैं आज बैठी हूँ और मुझे जो चाहता था वो मिल गया है, उनके सिवाय मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो यज्ञ से तुमको 2 कपड़ा मिलेगा और दाल रोटी मिलेगी। तो मैंने बोला बाबा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया है। और ऐसे भी जब साकार बाबा के पहले जानकी दादी ने मांगनी की मेरे जीवन की, और मैं मधुबन में नहीं आई थी, पिताजी आए थे, उस समय पिताजी से मांगनी की थी कि ये जनक बच्ची से मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बच्ची है, उसको यज्ञ में दे दो। तो बोला कि वो छोटी है बाबा, मैं नहीं दे सकता। तीसरी आश्चर्य की बात ये है कि जो यज्ञ के अंदर मुझे मांग के जो लिया है वो मम्मा ने भी लिया है। बाबा के पहले जब अव्यक्त रूप में पालड़ी सेंटर पर जब कुमार का दादी की बहन कृष्णा दादी थी वो भोग लेकर के वतन में गई, तो उसी समय मम्मा ने पधरामणी किया। पहले तो मम्मा भी आती थी, तो जब मम्मा आई और सबको क्लास में दृष्टि दी तो पहले ही हमारे माता पिता को और मुझे भोग के आगे बुलाया, और भोग के आगे बुला करके पिताजी को बोला कि ये किसकी बच्ची है। पिताजी ने बोला मेरी है। बोला मम्मा ने बोला नहीं आपकी बच्ची नहीं है, ये यज्ञ की है, भगवान की है, और आप उसको यज्ञ में दे दो। तभी भी पिताजी ने मम्मा को ना बोला कि बहुत छोटी मुझे बहुत पढ़ाना है, लेकिन उस समय मम्मा ने भोग का हार लेकर के पिताजी को पहनाया, हम लोगों के पर फूलों की वर्षा की और बोला कि देखो ये बच्ची भगवान की है, आपकी नहीं है, ये मम्मा ने पक्का कराया। तो मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा हुआ है कि मुझे जानकी दादी हमारी अलौकिक माँ बनी, ब्रह्मा बाबा हमारे जीवन को समर्पण करने के लिए अपनी गोद में बिठा करके समर्पण किया, और उनके बाद मम्मा ने उनके पहले मांगनी की, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और उसी समय जब बाबा छुट्टी दे रहे थे तो बाबा ने कहा कि अच्छा लच्छू बच्ची अभी मेरी बच्ची सेवा में सीधा सेंटर पर जाएगी, तो आज बाबा अपने हाथ से गिट्टी खिलाएगा। तो उस समय छोटी सी कोयले की सगड़ी लेकर के और छोटी छोटी फुलका बाबा की रूम में ही बना करके दिया बाबा को, रोटी छोटी फुलका उसमें मक्खन और मध लगा करके बाबा के हाथ में दिया, और बाबा ने मुंह में खिलाया और खिलाते खिलाते भी बाबा यही कह रहे थे कि बच्ची बाबा ये गिट्टी खिलाता है लेकिन आपको ये रोटी करना और दाल रोटी बनाना सीख जाना है। और खुशी की बात मैं आपको ये बताऊं, बाबा ने जब शरीर छोड़ा और जब सबसे पहले ये बाबा का प्रोग्राम जो चला, कॉन्फ्रेंस चली और अपना ये बाबा के अवतरण का प्रोग्राम होता, उसमें जब ये मेला होता तो सबसे पहला जो सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपा गया उसमें दादी ने हमको रोटी डिपार्टमेंट दिया, जो वो आज तक चलता है के जब जब गुजरात का टर्न आता है के तो रोटी डिपार्टमेंट का टर्न हमारा ही होता है के तब मुझे लगता है कि बाबा ने अपने हाथ से जो रोटी खिलाई और वही रोटी डिपार्टमेंट जो है वो हमको दिया। और उनके साथ साथ जो बाबा के पास और दादियों के पास रहकर के जीवन के अंदर जो सीखा है वो ये है कि बाबा के द्वारा जो दादियों की पालना हुई, जो त्याग तपस्या और सेवा का मंत्र जो है वो उन लोगों के जीवन के अंदर पक्का था। जब मैं बाबा के सेवा केंद्र पर सेवा के लिए आई उसी समय जैसे कि बाबा की हर कार्य जो ड्यूटी मिले और जैसी ड्यूटी मिले कभी ना नहीं बुलाए है, कुछ भी घर में नहीं किया था लेकिन जो कुछ सीखा है वो बाबा के घर में ही आके सीखा। और ऐसे ही बुद्धि में रखा था कि बाबा मुरली के अंदर घड़ी घड़ी कहता है कि तुमको दधीची रूसी के माफक बनना है, तो मुझे जो भी कार्य मिले मुझे दधीची बनकर के कार्य करना है। हमारी जो सारी हड्डियां है वो हमको अपने बाबा की सेवा में लगाना है। उसी समय सेंटर की जो परिस्थिति वो बेगरी पाट जैसे ही थी और ऐसे ही बाबा के घर में वो भी अनुभव किया कि कैसे दो कपड़े और दाल रोटी खा करके बाबा की सेवाएं की। बाबा ने सेवा के लिए मुझे बड़ौदा भेजा और साकार में बाबा थे 1979 की पहली तारीख को मैं जब बड़ौदा गई तो बाबा का पत्र आया कि बच्ची अभी तुमको बड़ौदा रहना है। और उनके बाद 18 तारीख को बाबा ने शरीर छोड़ा और जब 18 तारीख को शरीर छोड़ा और दादी जी का फोन बड़ौदा में आया उसी समय हमारी प्रदर्शनी का लास्ट दिन था। हम सब रास कर रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे और सल्ला दीदी ने कहा कि बाबा की प्रदर्शनी पूरी होने के बाद मधुबन में कौन चलेंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो बाबा इतना खुश होगा, अच्छा बहुत सेवा करके आए हो, थक गए होगे, बाबा आप लोगों को थकान दूर करेगा तो बाबा पिकनिक कराएगा, गुजराती बच्ची आई है तो रास कराएगा तो हम लोग सब चलेंगे। तो सब तो ऐसे कि बाबा का जूत था पार्ट, तो उसी समय जैसे कि बाबा ने शरीर छोड़ा तो हमको बोला तुमको बड़ौदा ही रहना है, हमारे साथ नहीं चलना है। सभी रात को 1:30 बजे की ट्रेन में निकल गए और मुझे बड़ौदा रख के गए, क्योंकि मेरा ये स्वभाव था ना नहीं बोलने का। और इसीलिए मैंने बोला ठीक है आप जो प्रोग्राम, लेकिन मेरे मन में एक बात थी, दुख ये था कि जिस बाप ने अपनी गोदी में बिठा करके समर्पित किया उसका अंतिम विधि मैं नहीं देख सकूंगी। लेकिन आपको ये भी आश्चर्य लगेगा कि हमारे दिल की इच्छा और भावना भगवान कैसे पूरी करता है। तो उस समय 3 दिन तक हमने अखंड योग की भट्टी किया और खाना पीना खाने बिगर बाबा की तपस्या में बैठी रही। और मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा आपने ही हमको अलौकिक जीवन दिया, समर्पित किया, और आपकी अंतिम समय की जो दर्शन है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसी समय जिस समय मधुबन यज्ञ के अंदर जो चलता था सीन वो मेरे आंखों के सामने खुली आंखें, ऐसे भी नहीं कि कोई साक्षात्कार हुआ, खुली आंखों से वो सीन दिखाई पड़ता था कि कैसे बाबा को श्रृंगार आए, कैसे बाबा को अग्नि संस्कार देते है, उस समय मुझे होता था कि अग्नि संस्कार बाबा को दे रहे है, कैसे ज्वाला निकल रही है, कितना सुंदर बाबा का रथ था, अभी पांच तत्व में मिल जाएगा, तो हमारा तो उससे कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये अंतिम समय का दृश्य देखा, तीन चार दिन के बाद मधुबन में आना हुआ और उसी समय हमने वही सीन देखा जो हमने बड़ौदा के अंदर अपनी आंखों से देखा, वो फिल्म में देखा। तभी हमको लगा कि देखो बाबा हरेक बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं। अभी हमारा टाइम पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ ही पूरा करती हूँ। ओम शांति।